बापू जी आपके श्री चरणों में प्रणाम। गोपियों और सखियों के भाव में अंतर क्या था?
देखो, गोपियां जो थी, देखा जाए तो वैसे तो सब एक ही है, लेकिन गोपियां जो थी वो सब कृष्ण को प्यार करती थी और कृष्ण की असिस्टेंट थी सारी की सारी। लेकिन जो सखियां थी वो राधा रानी की थी, और उन सखियों का काम राधा रानी को सजाना धजाना, खिलाना पिलाना, घुमाना फिराना, संगीत सुनाना, मनोरंजन करना और श्याम सुंदर से मिलवाने की व्यवस्था करना, ये सारा सखियों का काम था। और उन सखियों में आठ अष्ट सखियां प्रधान थी, जिनका आज भी श्रीधाम वृंदावन में मंदिर है, अष्ट सखी मंदिर। तो इस सखियों का काम, और सखियां सब छोटी छोटी थी, सब की सब, जिसे हम कहते हैं ना कि जो एडल्ट ना हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, टीनेज भी नहीं है, प्रीटी, ब्रीटिंग, प्रीटिंग, हाँ चलो ठीक है। तो वो जो थी वो सब वो थी, यानी अंडर 16, उसमें कोई 14, कोई 13, कोई 15, इस तरह से सखियां। और वही सखियां राधा रानी के साथ निकुंज में भी रहती है, क्योंकि जो निकुंज है वहां गोपियों का भी प्रवेश नहीं है, वहां सिर्फ सखियां जा सकती हैं। और वो सखियां अष्टयाम सेवा जो है वो करती है, इसलिए कहीं गोपियों से भी एक कदम सखियां है जी। और कोई प्रश्न?
राधे कृष्ण बाबूजी, हमारा बाबूजी कौन सा जन्म का अच्छा कर्म था कि जो आज मौका मिला है आपके शरण और कृष्ण के आने का, ये हमारा कौन सा ऐसा भाग था कि हम आया है?
देखिए, इस संसार में जो भी हमें मिलता है, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, वो हमारे अपने प्रारब्ध का फल है। जो हमें रिश्तेदार मिले और हम नहीं जानते हैं कि आगे और कौन मिलने वाला है, वो भी हमारे अपने कर्मों का फल है। जैसे आप में से ऐसी बहुत सारी माताएं थी जो कल तक मेरे पास अकेली आती थी, जिसे हम कंवारी कहते थे। तब उसको यह नहीं पता था कि आने वाले कल में उसके जीवन में किस प्रकार का आदमी आने वाला है। या ऐसे कई लड़के थे जो मेरे पास आए तो अकेले थे, और उनको नहीं पता था कि उनके जीवन में किस प्रकार की लड़की आने वाली है, लेकिन समय के साथ साथ आई और उनका विवाह हो गया। लड़की पत्नी बन गई, लड़का पति बन गया, और तब भी उनको ये नहीं पता था कि अब आने वाले सालों में उनके जीवन में कौन आने वाला है। तब आलोप सर्ण पता पड़ा कि जो लड़की थी मां बन गई और उसकी यहां बेटी हुई, लड़का था वो बाप बन गया और उसकी यहां बेटी हुई या बेटा हुआ। तो हमें भी नहीं पता होता है कि आने वाले कल में हमारे जीवन में कौन कौन आने वाला है। मैं यहां व्यास आसन से यह दावा नहीं कर सकता हूं कि अब मेरे जीवन में कोई आएगा नहीं। न जाने कितने लोग कहां कहां बैठे होंगे, किस किस जगह कहां कहां प्रतीक्षा किस किस की कर रहे हैं, वो आप नहीं जानते। और हम ये भी नहीं जानते कि आने वाले लोगों से हमें सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, ये भी हम नहीं जानते हैं। और कभी कभी तो हमें पता भी होता है लेकिन फिर भी हमें उनको स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि वो हमारे प्रारब्ध का कर्म का फल होता है, उसे आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे, अवॉइड नहीं कर पाएंगे, लेना ही पड़ेगा। ये सब हमारे अपने कर्मों का प्रारब्ध है, इसे आप अवॉइड नहीं कर सकेंगे। तो हमें हमारे कर्म प्रारब्ध न चाहते हुए भी स्वीकार करने पड़ते हैं। मैं अपनी जिंदगी के अनुभव बता रहा हूं, फिर हंस के स्वीकार करो या रो के करो, वो करने पड़ते हैं। और जब प्रारब्ध उदय होता है तो हमारी बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है क्योंकि हमें उसे स्वीकार करना होता है। लेकिन गुरु और कृष्ण ये किसी प्रारब्ध का फल नहीं है, ये कृपा है। जब हमें गुरु महाराज मिलते हैं तब समझ लेना भगवान की कृपा हुई। ब्रह्मांड ब्रह्मित्ते लोक कौन भाग्यवान जीव, इस ब्रह्मांड में जीव भटक रहे हैं अपने अपने प्रारब्ध से। कभी कभी हमें लगता है कि जिसको हम स्वीकार कर रहे हैं वो हमारे स्टैंडर्ड का फिर भी तो कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? हमारे प्रारब्ध करवा लेते हैं। जब हम नहीं उसे स्वीकार करना चाहते, सोचते नहीं नहीं ये मेरे लेवल का नहीं, ये मेरे स्टैंडर्ड, फिर भी कर लेते हैं। और लोग उस समय हमें कहते तुम्हारी अकल मारी गई थी क्या? लेकिन वाकई अकल मारी गई थी हमारे प्रारब्ध के कारण। लेकिन जब ब्रह्मांड ब्रह्मित्य लोक कौन भाग्यवान जीव, अब ये कर्म भोगना कर्म करना कर्म भोगना कर्म करना कर्म भोगना कर्म करना ये सिलसिला चल रहा है। यहां तक कि हमारा शरीर भी हमारे कर्मों से मिला है, सात्विक राजसिक और तामसिक तीन प्रकार का शरीर होता है और वो भी हमें अपने कर्म से मिला है। हमारा अपना स्वभाव भी हमारे कर्म से मिला है, हमारी आंखें हमारे नाक हमारे कान हमारी आवाज तक भी हमारे कर्म से मिली है। आवाज भी हमारी चॉइस नहीं है, अगर हमारी होती तो शायद हर लड़की लता होती, लेकिन नाम लता रखने से गुण लता के आ नहीं जाते हैं, नाम गंगा रखने से गुण गंगा के आ नहीं जाते, नाम शांति रखने से गुण शांति के आ नहीं जाते। हम नाम तो अपनी पसंद का रखते हैं, नाम तो अपनी पसंद का रखेंगे लेकिन उसमें काम हम अपनी पसंद का नहीं ले सकते, वो उसके प्रारब्ध उसके गुण करवाएंगे। इसलिए ब्रह्मांड ब्रह्मित्य लोक, इस ब्रह्मांड में जीव कर्म करते हैं, कर्म भोगते हैं, कर्म करते हैं, कर्म भोगते हैं, कर्म करते हैं, कर्म भोगते हैं, कर्म करते हैं और फिर कर्म, और भोगते हैं कैसे, नाना प्रकार के लोगों के रूप में। कभी हमारे कर्म हमारी पत्नी बन के आ जाते हैं, कभी हमारे कर्म हमारा पति बन के आ जाते हैं। मैं तो जान चुका हूं, लोग कहते हैं ना मुझे मेरी सास सताती है, पति सताता है, पत्नी सताती है। हमें कोई नहीं सताता, उस रूप में हमारे कर्म सताते हैं। जो कभी सास का रूप में आ गए, कभी बहू के रूप में आ गए, कभी पत्नी के रूप में आ गए, कभी पति के रूप में आ गए, वो हमें हमारे कर्म। क्योंकि अगर वो व्यक्ति सताता होता तो सभी को सताता, लेकिन वो हमारे साथ बुरा है और दूसरों के साथ तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि दूसरों के साथ अच्छा है यूं है कि उसके कर्म दूसरों से अच्छे हैं, और हमारे साथ बुरा यूं है कि हमारे फल उससे बुरे हैं, इसलिए वो हमारे साथ। हम कभी कभी कहते मेरे साथ ही ऐसा, बाकियों के साथ तो वैसा, तो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों, तुमसे दुश्मनी नहीं, तुम्हारी कर्म उस रूप में आए। मैं छोटी सी एक कथा सुनाऊं, श्री राधे। दो दोस्त थे, उसमें एक बहुत ही पैसे वाला करोड़पति दोस्त, अच्छा बिजनेस चलता, और एक दोस्त बहुत ही गरीब था। गरीब था और उसकी नीयत भी खराब थी, इसलिए सदैव उसकी नीयत अपने दोस्त की दौलत में रहती थी कि कैसे इसकी दौलत हथियाई जाए, कैसे इसकी दौलत हथियाई जाए। और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने दोस्त को कुछ ऐसा जहर देने लग गया, पता भी नहीं चला, और एक दिन उसका दोस्त मर गया। याद रखना मेरी माताओं बहनों मित्रों, कभी कभी हमारी सफलता भी हमारे लिए मुसीबत बनती है, कभी कभी हमारी सुंदरता भी हमारे लिए मुसीबत बनती है, कभी कभी कोई हमारा गुण भी हमारे लिए मुसीबत बनता है। क्योंकि हम जिस जगह पर है वहां अवश्य दुख का राज है। किसका राज है? लता मंगेशकर का। एक बार अगर आपने इंटरव्यू सुना होगा, बहुत फेमस था, कि इंटरव्यू करने वाले ने पूछा कि आपको अगर दूसरा जन्म मिले तो आप फिर से लता मंगेशकर बनना चाहोगी? ये इंटरव्यू हो सकता है आपने भी सुना हो। तब लता मंगेशकर ने हंस के कहा, नहीं, मैं दूसरे जन्म में लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूंगी, क्योंकि लता की अपनी समस्याएं बहुत है और वो लता ही जानती है, इसलिए मैं दूसरे जन्म में लता नहीं बनना चाहूंगी। जिसके पास करोड़ों करोड़ों रुपए, इतनी शोहरत, भारत रत्न, लोग उसके सामने सजदे करने लगते, उसे कहते मां सरस्वती का अवतार। आगे पीछे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर घूमते, और शायद 35-36 हजार से ज्यादा भी जिसने गाने गाए। वो कहती, मुझे दूसरा जन्म लता का नहीं चाहिए, क्योंकि लता की समस्याएं लता ही जानती है। आप समझ सकते हैं? ऐसे अमिताभ बच्चन की हो सकता है उसकी समस्या वो जानता हो, सचिन तेंदुलकर की अपनी समस्याएं वो जानता हो, सबकी अपनी समस्याएं हैं और उसकी समस्याएं वो ही जान पाता होगा। ये सब हमारे अपने अपने कर्मों का, लेकिन ये करना भोगना ऐसे साइकिल में कौन भाग्यवान जीव? क्या हुआ? गुरु कृष्ण प्रसाद पायो भक्ति लता बीज, कि गुरु की कृपा और कृष्ण की कृपा हुई तो ये भक्ति मिली। इसलिए गुरु महाराज मिल जाना, एक प्रमाणिक गुरु महाराज मिल जाना, ये संकेत है कि कृष्ण की कृपा हुई है। पक्का समझ लेना, क्योंकि गुरु महाराज को ही कहते कृष्ण कृपा मूर्ति, कि कृष्ण की कृपा हुई नहीं, कृष्ण की कृपा मिली। किस रूप में? गुरु महाराज के रूप में कृष्ण की कृपा मिली, और उस कृपा के माध्यम से हमें कृष्ण भक्ति मिली, कृष्ण भजन मिला, कृष्ण दर्शन मिले, कृष्ण भावना मिली। तो याद रखना, मैंने एक दिन अपने गुरु महाराज से सवाल पूछा कि गुरुदेव मेरे ऐसे कौन से कर्म हो गए कि आप मिले, मेरे कौन से सौभाग्य थे? तब मेरे गुरुदेव ने इंग्लिश में कहा, आई मेड यू फॉर्चुनेट, तुम्हारे कोई कर्म नहीं है, मैंने तुम्हें सौभाग्यशाली बनाया। जैसे सौभाग्यशाली, इसीलिए तो वो एक हम कभी कभी सूफी कलाम सुनते हैं जिसमें कहते हैं खुसरो निजाम के बल बल जाए क्या क्या मोहे सुहागन की दी मुंह से नैना मिलाए। मुझे कृष्ण दिया, मेरा सुहाग दिया। तो गुरु कृपा से कृष्ण कृपा हुई, और कृष्ण ने जब चाहा तो गुरु मिले। ये किसी कर्म का फल नहीं मानना, ये कृपा है जी। और कोई प्रश्न?
हरे कृष्ण बापू जी हम ऐसे कौन सी चीज करें जिससे गुरु महाराज हम पे प्राउड फील करें?
प्राउड फील करे, बस आप लोग भजन करो अच्छे से, कॉन्फिडेंस के साथ एजुकेशन करो, और कोई ऐसी हरकत न करो जिससे तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारे गुरु का सर कभी झुके। ऐसा कुछ नहीं करो तो सदैव गुरु महाराज तो प्राउड करते ही है।
हरे कृष्णा बापू जी, आपके बापू जी, जब भी हम आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं या हम डिसाइड करते हैं कि अभी से हम ऐसा 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 करेंगे, तो कुछ परिस्थितियाँ या टाइम मैनेजमेंट ऐसा होता नहीं है कि उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाए, तो उसके बाद जो है ना एक इतनी बेचैनी और मतलब खुद से नफरत हो जाती है, सारा दिन खुद को डांटना। और ऐसे में जब कोई और आगे बढ़ता है ना, तो एक मन में आता है कि तुमसे ही नहीं होता है, बाकी सबसे होता है। तो ये गलत विचार है या राइट टाइम का वेट करना चाहिए?
पहली बात तो ये है कि यदि हमें कृष्ण की कोई सेवा करने का विचार आता है, अभी सेवा हमने की नहीं, सिर्फ क्या आया? विचार आया, और उस विचार के लिए हमने संकल्प किया कि ये सेवा मैं करूंगा, अभी की नहीं है। लेकिन ये संकल्प ही ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, अभी करना तो वो दूर की बात है, इतने दयालु, इतने दयालु। और जरूरी नहीं कि जो डिसीजन आपने लिया कि ये सेवा मुझे करनी है और तुरंत ही कर दी जाए। शीला भक्ति प्रभुपाद जी महाराज को 1922 में ये आज्ञा मिली थी कि पश्चिम के देशों में जाकर प्रचार करो, और वो अपने आप को तैयार करते करते 1960 कब गए थे प्रभुपाद पश्चिम? 65 64 पक्का 65 में गए, कितने साल लग गए, लेकिन उस बीच अपने गुरु की आज्ञा को कभी भूले नहीं और उस पे चलते रहे और एक दिन गए। ऐसे जरूरी नहीं है कि आपने कुछ सोचा और उसी वक्त हो जाए, लेकिन सोचा तो सही, कृष्ण को यह भी स्वीकार है। जैसे मुझे मेरे गुरु महाराज ने कथा सुनाई थी कि एक बहुत ही शुद्ध वैष्णव, अर्थात एक वैष्णव लेकिन बहुत गरीब था, और जमुना जी के किनारे बैठ जाता और संकल्प संकल्प में ही आंखें बंद करके संकल्प करता, और संकल्प क्या करता, आज मैंने ठाकुर जी का मार्बल का मंदिर बनाया, बन गया, और अब मैं ठाकुर जी को भोग अर्पण कर रहा हूं, और आज दाल पकवान का भोग लगा रहा हूं, कोई उल्लासनगर का होगा। ऐसे रोज कुछ ना कुछ करता। एक दिन उसने बहुत सुंदर सोने का मंदिर बनाया और एक सोने का कटोरा लिया, किसमें, भाव भाव में, संकल्प संकल्प में, और सोने के कटोरे में गरम गरम खीर डाली ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए, और सोचा ये तो बहुत गर्म होगी, मेरे ठाकुर जी का मुंह ना जल जाए, चेक कर लो कितनी गर्म है। और उसने कटोरे को क्या लगाया, हाथ लगाया, और सच्ची में उसकी उंगली जली। ये क्या, जैसे गर्म गर्म कटोरे को हाथ लगा और उसकी उंगली ऐसे जली और आंख खुल गई, मतलब ठाकुर जी ने उसके भाव को भी साकार कर दिया और स्वीकार किया। इसलिए आप जो सोचते हो कि मैं ये करूं, मैं वैसा करूं, मैं वैसा करूं, आपने अभी किया नहीं है, लेकिन ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया।
बाबू जी,
जहां तक सेल्फ गिल्ट का संबंध है, तो सेल्फ गिल्ट कब होना चाहिए, जब डेलीब्रेटली वो ना किया जाए, डेलीब्रेटली उस सेवा को इग्नोर किया जाए, डेलीबेटली उस सेवा को अवॉइड किया जाए, करने की स्थिति है तब भी ना की जाए, तब सेल्फ की गिल्ट आना चाहिए। लेकिन यदि करना चाह रहे और किसी कारणवश स्थितियां नहीं है, तो उसमें सेल्फ गिल्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आप जो कर रहे हैं कोई और कर लिया और आप सोचो अरे अपने बस की बात नहीं है, नहीं, हम सबों की बस की बात है, बस समय किसी का देर से आता है। क्या बोला, बोलो, समय किसी का देर से आता है बस, और कभी कभी किसी का समय जल्दी आ जाता है। प्रभुपाद जी का समय कब आया, 70 साल की उम्र में, तब तक तो वृंदावन में उनको कोई पहचान तक नहीं था, और शीला प्रभुपाद जी महाराज फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस को मधुकरी करनी पड़ती थी, और एक छोटी सी कुटिया में रहते थे जो हम देखते हैं राधा दामोदर मंदिर, लेकिन वो इंतजार करते रहे, निराश नहीं हुए, इंतजार करते रहे। आप भी एक स्लोगन ले लो मेरे बच्चों, क्या ले लो, सोचो और अगर कर न पाओ तो निराश मत होना, खुद से कहना अपना टाइम भी आएगा। क्या बोला, अपना टाइम भी आएगा। और श्रील प्रभुपाद जी हमारे सामने हैं 70 बरस, अभी तो आप लोग की किसी की 40 बरस भी उम्र नहीं है। इसलिए निराश ना हो, आपने सोचा कृष्ण स्वीकार कर लिया, बस उतना काफी है। अभी तो हमने अमल प्रैक्टिकली तो क्या नहीं है, सोचा और उसे स्वीकार कर लिया, इसलिए निराश तो होना ही नहीं है। शिला प्रभुपाद जी कहां निराश हुए, 50 बरस की उम्र में आए घर छोड़ के, और 70 बरस 20 साल तक इंतजार ही किया, लेकिन आखिर में तो उनका टाइम आ ही गया। जरूरी नहीं है कि हर इंसान हर रोल को ठीक तरह से निभा सके, क्योंकि आखिर तो वो इंसान है और सबकी एक्सपेक्टेशन पूरी करना एक इंसान के बस की बात नहीं है। भगवान से भी लोगों को शिकायतें होती है, तो हम तो कौन है, इंसान है। इसलिए निराश मत होना, सोचना अपना टाइम भी आएगा, लेकिन जब तक टाइम आए खुद को वहां पर डटे रखना एक बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है खुद को वहां पर डट के रखना, क्योंकि सामने निराशाएं दिखती है, लेकिन रुको अपना टाइम भी आएगा। अगर ये संकल्प है तो हर नामुमकिन चीज भी मुमकिन हो सकती है। नित्य भजो, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, शील भक्तिपाद प्रभुपाद निताय गौर।